भुवन निसार रीत राग री ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तीनों लोकों में सारभूत वितराग विज्ञान स्वरूप भगवान ज्ञायक आत्मा को नमस्कार करने के उपरांत दौलत राम जी ने छेड़ाला को प्रारंभ किया। चतुर्गति के दुखों को बतलाने के लिए बाहरी परिस्थितियों को बतलाया और फिर उसके मूल कारण को भी बताया। दुख का मूल कारण चार गतियों के संयोग नहीं है, अपने आप को भूलना ही दुख का कारण है। फिर उन कारणों की चर्चा दूसरी ढाल में बहुत विस्तार से की और तीसरी ढाल में उसके अभाव के उपाय बतलाते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा की। इस संदर्भ में यहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा सर्वप्रथम की जा रही थी। इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म तत्व की रुचि, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जितने पर द्रव्य सबसे भिन्न, अब इसमें सारी बातें आ जाएगी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जगत का जो पदार्थ इससे छूट जाएगा। माने इसमें जगत के किसी भी पदार्थ की रुचि संभव नहीं है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, चाहे कोई काल हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई संयोग हो, जो कुछ भी हमारे को अच्छा लगता हो, यदि वो मेरे आत्म तत्व से भिन्न है तो वो पर की रुचि है। यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि सुनने की भी रुचि, जिनवाणी सुनने की भी रुचि पर द्रव्य भिन्न है। और पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्म तत्व की रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और उसी आत्मा में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। फिर कहा कि ये तो ठीक है, आपने कहा हमारे स्वामी आचार्य ने सात तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा है कि हाँ हाँ, भेद रूप श्रद्धान को व्यवहार से सम्यक कहा है। फिर सात तत्वों की चर्चा इन्होंने यहाँ प्रारंभ की। इसमें जीव तत्व की चर्चा करते हुए सबसे पहले ये बतलाया कि वो जीव तत्व या आत्मा तीन प्रकार का है, बहिरातम अंतरातम परमातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। कितने सरल बात कह दिए यहाँ। हम सब बहिरात्मा का जो स्वरूप बतलाया है वो बहुत गहराई से समझने योग्य है, क्योंकि हम सबकी आसक्ति पर पदार्थों में दिखाई देती है। हम सबकी तन्मयता, एकत्व, ममत्व, बुद्धि, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब पर पदार्थों के साथ में जुड़ी हुई है, इसे ही बहिरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा माने संसारी, बहिरात्मा माने जिसका संसार परिभ्रमण बहुत लंबा है, बहिरात्मा जिसको मोक्ष का मार्ग नहीं मिला है, बहिरात्मा माने दुखी। तीन लोक में दुखी कौन है कि जो बहिरात्मा है वो दुखी है। और ये बहिरात्मापन अपनी मिथ्या भ्रांति के कारण है। देह के प्रति अपनेपन की मान्यता है, बहिरात्मापन है। मैं दुकान चलाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, ये सब मैं ही तो करता हूँ, देखो तो सही आप मैंने क्या क्या नहीं किया इनके लिए। कभी देश के लिए करने की बात करता है, कभी समाज के लिए बात करता है, कभी कहता है कि मैंने परिवार के लिए कितना नहीं किया, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया था मैंने, लेकिन आज देखो आप सामने जवाब देते हैं कि तूने कुछ नहीं किया। जो उनके साथ में परिस्थिति बनी है वो उनके उदय के हिसाब से बनी है, उसमें हम निमित्त मात्र भी बहुत उपचार से हैं, क्योंकि असली निमित्त तो कर्म का उदय है। उनके साथ में बनने वाली परिस्थिति के लिए असली उदय किसका है कि कर्म के उदय का। तो फिर हम कौन खाम खामे उसके साथ में राजद्वेष करते। माने ऐसा मिथ्या मान्यता और ऐसा मिथ्या भ्रम हो जाता है जब पुण्य का उदय होता है तो, क्योंकि चलती है ना पुण्य के उदय में हमारी, जब पुण्य के उदय में हमारी चलती है तो मान्यता पुष्ट हो जाती है, एक काम हो गया तो ऐसे लगता है कि इसी से होता है, ऐसा लगने लग जाता है। दो पागल व्यक्ति जंगल में कहीं रास्ता पार कर रहे थे, जेठ माह की जून महीने की बहुत कड़ी गर्मी का सीजन, और कोई एक मंदिर उनको रास्ते में दिखा, देखा अरे मंदिर में भगवान बैठे हैं, हमें इतनी गर्मी लग रही है तो भगवान को कितनी गर्मी लग रही होगी। तो एक ने दूसरे से कहा कि एक काम करते हैं कि थोड़ी दूर उधर छाया दिख रही है, एक काम करते हैं थोड़ा धक्का लगाते हैं मंदिर को और छाया में खिसका देते हैं, क्या खिसका सकते हैं। खूब कोशिश की उन्होंने, खूब धक्का लगाने का प्रयास किया और दो चार छह घंटे हो गए धक्का लगाते हुए, और फिर अंत में पसीना पहुंचते हुए घड़ी देखते हुए कहते हैं कि छह घंटे लग गए मंदिर को धूप में से छाया में लाने में, छह घंटे में वो मंदिर को धूप में से छाया में ले आए। पता है आपको कहां छाया में ले आए, छह घंटे में तो अपने आप ही छाया आ गई थी। उन्होंने ऐसा समझ लिया कि कितनी मेहनत करके हम इसको छाया में ले आए। ऐसे मिथ्या मान्यता का पोषण हो जाता है, मिथ्या तो पुष्ट हो जाता है कि लाए तो हम ही है, किया तो हमने ही है ये काम, ये बात समझ में नहीं आती कि वो तो अपने आप ही छाया में आया है। ऐसी जो भी स्थिति बन रही है हमारे साथ में, ये सब प्रारब्धानुसार पदार्थों के स्वतंत्र परिणमन अनुसार बन रही है, कि हम ऐसा समझते हैं कि हमने ही किया है और हम ही कर रहे हैं। देखो हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, चार बच्चे थे साथ, एक बच्चे को हमने कलेक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया और एक डॉक्टर है यहाँ आज, चार में से तीन तीन बच्चों को क्या गजब काम हो गया है कि चौथे का वो थोड़ा अनाड़ी रह गया, वो अनाड़ी रह गया। यदि हम ही उनको बड़ा बनाने वाले हो तो चौथे को क्यों नहीं बनाया। सच में जो काम अच्छा होता है उसके बारे में ये कहता है कि मैंने किया है, और जो काम बुरा होता है उसे ऊपर वाले के ऊपर टाल देता है। लेकिन भाई वास्तव में यदि हम बुरे कार्यों के कर्ता नहीं है तो अच्छे कार्यों के कर्ता भी हम नहीं है। एक साथ है दोनों बातें, यदि आप अच्छे के कर्ता बनना चाहते हो तो बुरे के कर्ता भी हो व्यवहार से, और यदि आप बुरे के कर्ता नहीं हो तो फिर आप अच्छे कार्यों के कर्ता भी नहीं हो। न्याय तो यही है, यही बात इन्होंने यहाँ बहिरात्मापन के स्वरूप के संदर्भ में बतला दी है। अपन ने काफी चर्चा इसके बारे में कर ली है कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, यह बहिरात्मापन बाहर में नहीं होता, यह बहिरात्मापन अपने ही अंदर में होता है। फिर अंतरात्मा की चर्चा प्रारंभ की, जिसकी मान्यता सुधर गई है, जिसका अभिप्राय सुधर गया है, वो कौन है, वो सम्यक दृष्टि है, वो अंतरात्मा है। सूक्ष्म मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी, जगन कहे अविरत सम दृष्टि, तीनों शिव मगचारी। क्या कह रहे हैं, कितनी बात कह दी है अंतरात्मा के संदर्भ में। अंतरात्मा के तीन प्रकार हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। अंतरात्मा किसे कहते हैं, बहिरात्मा का स्वरूप समझ में आ गया, बाहर में आत्मा समझने वाला, शरीर को आत्मा समझने वाला, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, बहिरात्मा। शरीर से अपने आप की नाप करने वाला वो बहिरात्मा, संयोगों से अपने आप को छोटा बड़ा मानने वाला वो बहिरात्मा, अपने आप को मनुष्य समझने वाला, स्त्री पुरुष समझने वाला, वो सब बहिरात्मा है। हम समझ लिए, हम सब यही तो मान बैठे। सच में जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। हम उनसे पूछते हैं, जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, और हम आपका नाम लेकर के बोले तो आपको कैसा फील होता है। बस अपन अपने आप को नापने की कोशिश करें। अभी हम वचनों में तो बहुत होशियार हो गए हैं, बातों में तो बहुत चतुर हो गए हैं हम। बदलने की श्रद्धा और बदलता है भाषा। क्या बदलना चाहिए था यहाँ? मान्यता बदलनी चाहिए थी, अभिप्राय बदलना चाहिए था, श्रद्धान बदलना चाहिए था, और बदल क्या रहा है? भाषा बदल रहा है। हम आपसे बात करते हैं, और साहब आपकी तबीयत कैसे? अरे किसकी तबीयत साहब, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। कैसी बातें बनाता है, टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा, बातें बनाता है दूसरे को खुश करने के लिए, इस प्रकार की बात बोलता है। ये अंदर में अभिप्राय बदला कि नहीं बदला? अरे जिस नए से प्रश्न किया साफ साफ, उस नए से जवाब क्यों नहीं देता है? व्यवहार ने से पूछा गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसे है तबीयत? तो व्यवहार ने से जवाब दे दो, उसमें क्या ऐतराज है? लेकिन नहीं, हम थोड़े से अपने दिखाना चाहेंगे, प्रदर्शित करना चाहेंगे कुछ विशेष। अरे इनमें क्या दम है, हम तो आत्मा है। और फिर कहते हैं, अरे पंडित जी उठा बैठा नहीं जा रहा जवाब, अब कहां से आगे वो बात? जबरदस्ती बदलना चाहता है भाषा, परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन भाई साहब, भाषा बदलने से काम नहीं चलेगा। अंदर का अभिप्राय बाहरी प्रवृत्तियों से भी प्रकट हो जाता है। कब तक छिपाओगे आप उसको भाषा से? वो चीज प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी, कितना भी बदल लो आप। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे बिल्कुल प्रकट ख्याल में आ जाती है बात। एक चोर था, और वो किसी चौराहे पर भीड़ इकट्ठी थी, और एक नट खेल दिखाने वाला दोनों तरफ ऐसे लकड़ी बांस लगा करके और रस्सी बांध करके उसके ऊपर चलता था, और किसी जगह पर वो खेल दिखाता था। वो ऊपर चढ़ता था, उछलता था, छलांग लगाता था, रस्सी पर चलता था, और वो भीड़ लगी थी चारों तरफ, और देख रहा था चोर। कुछ देर बाद में उसका खेल खत्म हुआ और लोगों ने कुछ पैसे दिए, पैसे इकट्ठे किए और वो जाने लगा खेल दिखाने वाला। तो चोर ने उसको रोका कि भाई बहुत मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो और इतना सा कमाते हो, तुम तो बहुत पैसा कमा सकते हो। कि नहीं नहीं भैया, मुझे तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है। कि नहीं नहीं बहुत पैसा बना सकते हो तुम, मेरे पास है बहुत जबरदस्त काम। कि करना क्या होगा? कि वही काम जो तुम करते हो, बिल्कुल यही काम करना है और खूब पैसा मिलेगा तुम्हारे को। ठीक है, तो रात को मिलते हैं अपन वहां पर, रात को आओ। बुला लिया रात को, बोले अब चलते हैं ऊपर इस बिल्डिंग पर, ऊपर चढ़ते हैं अपन। चढ़ गए ऊपर, और फिर वो चोर कहता है कि अब एक काम करो कि जैसे यहाँ से, जैसे दिन में छलांग लगा रहे थे ना इधर से उधर रस्सी डाल करके, रस्सी पर चल करके, अब एक काम करो कि यहाँ से सामने बिल्डिंग पर रस्सी डालकर और चल करके उधर जाना है, उधर चलना है अपने को। तो वो खेल दिखाने वाला नट कहता है कि पहले ढोल बजाओ, भीड़ इकट्ठी होगी, लोग तालियां बजाएंगे, जाता हूँ ना मैं तो। माने उसके जो संस्कार है वो चीज छूटती नहीं है। कितना भी आप बदल लो, जगह बदल लो, लेकिन वो जो चला आ रहा है ना, जो उसकी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस नहीं बदलती है उसकी। तो हमारे जो संस्कार, जो परंपरा से जो चले आ रहे हैं, हमने कुछ देर यहाँ आए, जनवाणी की चर्चा सुनी, पढ़े, और यहाँ शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना, और फिर यहाँ से उठने के बाद में फिर वैसे ही वैसे ही जो संस्कार चले आ रहे हैं हमारे बरसों के, जो संस्कार है, जो प्रवृत्ति है, जो भोग में और उसमें जो आनंद है हमारे को, विषयों में, प्रवृत्तियों में जो मजा आता है हमारे को, वो बिल्कुल बराबर ज्यों का त्यों बना रहता है। यहाँ तो कहता है कि नहीं नहीं कुछ आनंद नहीं है, कुछ रस नहीं है, और फिर उधर ही दौड़ता है। कितना भी समझाने का प्रयास करें हम, ये है तो मिथ्या दृष्टि, है तो बहिरात्मा, और नाटक करता है अंतरात्मा जैसा, दिखना चाहता है सम्यक दृष्टियों जैसा, प्रदर्शन करना चाहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। लेकिन भैया बाहर से आचरण सुधार लेने से या बाहर से अच्छा दिखने मात्र से कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। सम्यक दर्शन के लिए ड्रेस नहीं बदलनी है, सम्यक दर्शन के लिए मान्यता बदलनी है। कपड़े नहीं बदलने हैं, घर नहीं बदलना है, देश नहीं बदलना है, जगह नहीं बदलनी है सम्यक दर्शन के लिए। तो क्या बदलना है? बदलने योग्य चीज को तो बदला नहीं, और बाहर में बदलता रहा ना मालूम क्या क्या। बाहर में क्षेत्र बदलता रहा, जगह बदलता रहा, सानिध्य बदलता रहा, कभी किसी के सानिध्य में, कभी किसी के सानिध्य में, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। लेकिन भैया इससे नहीं होता है, इनको बदलने से काम नहीं चलेगा। अंदर कितना बदला, ये जैन दर्शन जीवन जीने की कला सिखाता है। ये जैन दर्शन अंदर से बदलने की बात सिखाता है। अंदर से आपका हृदय कितना बदल गया है। जो जीव तत्व ज्ञान की शरण में रहते हैं उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये सत समागम आपका जीवन बदलने के लिए है। इससे जीवन सुधर जाता है, लाइफ बदल जाती है आपकी। किसान हुई तो हम नहीं बदलना चाहते हम तो ये चाहते हैं जैसी लाइफ हमारी चल रही है वैसी लाइफ चलती रहे, हर सत्संग भी चलता रहे। कि नहीं होता भैया, दो दो चीजों में एक साथ सुख की बुद्धि नहीं हो सकती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। दो घोड़ों की सवारी करने वाला तो घिरेगा ही, एक साथ कैसे? दो नावों में एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में रखकर जाएगा तो डूबेगा, वो तो बच नहीं पाएगा। ये दोनों विपरीत है, एक संसार मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग है। ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। एक ऐसा धर्म करने से तो संसार सुख भी मिलता है, धर्म करने से तो मोक्ष सुख भी मिलता है, तो ये दोनों काम नहीं होते। जरा हमने सुना है ऐसा और हम दिखा दें आपको, लिखा हुआ मंदिरों में दिखा सकते हो आप। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंच समान, नर तेरे अंच समान। हो सकता है आप कह सकते हैं ऐसा कि धर्म करत संसार सुख भी और धर्म करत निर्वाण भी। लेकिन भैया एक व्यवहार धर्म की बात कही है और एक निश्चय धर्म की बात कही है। एक ही कारण से दो काम नहीं हो सकते। जिससे संसार सुख मिलेगा उससे मोक्ष सुख नहीं मिल सकता, और जिससे मोक्ष सुख मिलेगा उससे संसार सुख नहीं मिल सकता। ये अंतर आत्मा क्या बदल गया बहिरात्मा और अंतर आत्मा में? देखो अभी जो कपड़े पहने हुए हैं, जींस टी शर्ट पहना हुआ है, शर्ट पैंट पहना हुआ है, जो कुछ भी आपने पहन रखा है, ये पहने पहने ही बहिरात्मा से अंतरात्मा हो सकता है। इधर ये कपड़े पहने पहने ही कि हाँ ये कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, हम तो सोच रहे थे सम्यक दृष्टि पता नहीं कैसे होते होंगे, सम्यक दृष्टि कुछ अलग, सम्यक दृष्टि तो स्पेशल होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल नहीं होते, हम आप जैसे ही होते हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। बहिरात्मा से अंतरात्मा होने में कुछ भी नहीं बदलता, ठीक है? मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा दिखता है मानो सम्यक दृष्टि हो गया हो, लेकिन अंदर से नहीं बदला इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। बाहर से देखने पर अच्छा सा दिखता है। मैं ध्यान आती है, घटना कहीं की है और पागल खाने में कुछ पागल व्यक्ति रहते थे, और एक ऑफिसर ने एक पागल व्यक्ति को बुलाया और कहा कि भाई हम तुम्हारे से बहुत खुश हैं और हम तुम्हारे को सजा जो है यहाँ जो तुम्हारे को जो कैद किया हुआ है हम तुम्हारे को यहाँ से मुक्त करना चाहते हैं। कल हमने एक घटना देखी थी, उस घटना को देख करके हम बहुत खुश हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन एक दुख खबरी भी है। कि क्या हुआ, घटना पहले दिन ये घटी थी कि उस पागल व्यक्ति ने एक दूसरे पागल व्यक्ति को स्विमिंग पूल में डूबते हुए बचा लिया था। डूब रहा था वो और डूबते हुए उसको बचा लिया था, हाँ पागल, बचा लिया उसको एक दूसरे व्यक्ति को। बचा करके, और उसको तो वो तो बच गया। अब वो जो डॉक्टर थे उन्होंने बुलाया, अरे तुमने उसको बचाया था, तो लगता है तुम बहुत अच्छे हो और अच्छा काम करने लगे हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो गई है, तो ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि हम तुम्हारे को यहाँ से मुक्त करते हैं। लेकिन दुख खबरी ये है कि जिसको कल तुमने डूबते हुए बचाया था, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली पंखे पर लटक कर। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसने आत्महत्या नहीं करी, वो तो स्विमिंग पूल के अंदर था तो बहुत गीला हो गया था, उसको सूखने के लिए मैंने पंखे पर डाला था। ख्याल में आ रही है आपको बात कुछ? जो क्या लग रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में, लेकिन है कैसा वो, उसकी प्रवृत्ति कैसी दिख रही है, समझदारों जैसी। पहले प्रवृत्ति कैसी दिख रही थी, समझदारों जैसी दिख रही थी। ये समझदारों जैसी प्रवृत्ति दिखने पर भी वो समझदार नहीं होंगे, वो है तो पागल ही। तो मिथ्यादृष्टि जीव की प्रवृत्ति कभी कभी आत्मार्थियों के सानिध्य में रहकर, कभी कभी स्वाध्यायियों के बीच में उठते बैठते हुए उसकी प्रवृत्ति में, उसकी भाषा में, उसकी वाणी में ये बात आने लगे, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो मुझसे भिन्न है। ये कहते हैं तो कोई अंतर आत्मा नहीं हो गया, वो है वैसा ही पहले जैसा ही, अभी तो ये बातें बनाता है, अभी तो ये बोलता है, ये ऊपर ऊपर से दिखता है। तो अंतरात्मा कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि अंतरात्मा होते हैं। सबसे हीन स्तर के अंतरात्मा है सम्यक दृष्टि। फिर वृत्ति पंचम गुणस्थान वृत्ति, ये मध्यम अंतरात्मा है, और मुनिराज ये उत्तम अंतरात्मा है। इस तरह से अंतरात्मा के तीन लेवल इन्होंने यहाँ बतला दिए। बहिरात्मापन से अंतरात्मापन श्रेष्ठ है, और अंतरात्मा के बाद में फिर आत्मा का तीसरा प्रकार या जीव का तीसरा प्रकार बतलाया है, जिसे परमात्मा का है।
आपने जो
प्रकार
बताया,
तो दो प्रकार तो काफी दिखाई
देते हैं, तो उनको सभी दर्शन होगा क्या? कौन से दो प्रकार? आपने बोले हाँ, सम्यक दृष्टि और वृत्ति। मुनि, यदि आपने कहा कि सब क्रम से जाता है, विद्या तो ये दो तो बहुत दिखाई देते हैं।
ये जो दिखाई देते हैं ना, ये सब बहिरात्मा है मैक्सिमम। मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन उसमें से बहुत लोग, क्योंकि सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, क्रम यही है। ये कैसे पता? क्योंकि मान्यता से पता लग जाता है, उनकी क्रिया परिणति से पता लग जाता है, उनके काम से पता लग जाता है। मतलब समझिए आप, 20x15 का मकान उन्होंने छोड़ा, और न मालूम कितने बड़े मकान के मालिक हो गए। कौन से मकान के? चार आदमियों का परिवार छोड़ा था, और 400 लोगों के परिवार को संभाल रहे हैं। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ? छोटे से क्षेत्र को छोड़ा था, अपने छोटे से मकान को, और आज बहुत बड़े क्षेत्र के मठाधीश बन गए हम। तो किस चीज के प्रति आसक्ति है? आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? यदि आप इस देह को, अपने नाम को यदि प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी एकत्व बुद्धि इस नाम के साथ में जुड़ी हुई है। प्रशंसा करने पर मजा आता है कि नहीं? किसकी प्रशंसा करने पर? अरे आत्मा की प्रशंसा करते हैं तो मजा आता है क्या? समझ में? अभी हम यहाँ 1 घंटे आत्मा की प्रशंसा करते रहे, आप लोगों को कितना मजा आएगा? घर जाकर के कौन कौन अपने फैमिली में ये बात कहेगा कि आज तो पंडित जी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। और आपका नाम लेकर के यदि मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से निकलते ही टेलीफोन जाएगा, पता है आज तो मेरा नाम लेकर बहुत तारीफ कर देगा हवा में, सब लोगों के बीच में आज उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी। मैंने प्रणय भाई, नाम से और शरीर से जितनी तन्मयता और जितनी एकत्व बुद्धि है, वैसी एकत्व बुद्धि और वैसी तन्मयता आत्मा के प्रति रंच मात्र भी नहीं है। समूह चरण में बैठकर 3 लोग के नाथ आत्मा के गीत गाते हैं भाई, आत्मा के गीत गाते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मेरे स्वरूप को बतलाते हैं। हमें अपने आप की महिमा नहीं आती, सिर्फ शंकरों को आत्मा की महिमा आ रही है। ये क्यों हो गए महान, ये बताओ? ऐसा क्या कारण है कि महावीर पूज्य हो गए, ये महान हो गए? उनकी पूज्यता का कारण क्या है? लोगों की भलाई करते हैं इसलिए पूज्य हो गए? उनकी पूज्यता का कारण क्या है?
जो बताया
उन्होंने शरीर से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव किया, ये पूज्यता का कारण है। उनकी देह से दृष्टि हटाई उन्होंने, ये उनकी पूज्यता का कारण है। वे वितरागी हो गए और अपने में समाहित हो गए, ये उनकी पूज्यता का कारण है। जो जगत को श्रेष्ठ मानते हैं वे जगत में कभी श्रेष्ठ नहीं हो पाते, और जो अपने आत्मा को महान समझते हैं वे महान हो जाते हैं। महान बनने और बड़े बनने का रास्ता भी बाहर से नहीं अंदर से जाता है। तो जो जगत में अंतरात्मा दिखाई देते हैं, हमने कहा ना दिखाई देना अलग बात है और होना अलग बात है। जो हैं हम उनको वंदन करते हैं, और जो दिखाना चाहते हैं वे तो हमारे जैसे ही लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम सबको जो महिमा आती है वो सबको महिमा संयोगों की आती है, परिग्रह की महिमा आती है, वैभव की महिमा आती है। देखो आज त्यागी तपस्वी संयमियों की भी महिमा इस बात से नहीं है कि उनका ज्ञान और वैराग्य कितना है, उनकी महिमा भी सच में आप लोग सोचना जरा इस दृष्टि से जो मैं बात कहता हूँ, सोचने का नजरिया है अपना अपना। उनकी महिमा हमारी दृष्टि में इस बात से है कि वे कितनी पब्लिक इकट्ठी कर पाते हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, कितने लोगों को आकर्षित कर पाते हैं अपनी तरफ, इससे हमारे को उस चीज की महिमा दिखती है। फिलहाल इनका चातुर्मास करा लो, देखना सोसाइटी के अंदर कितना पैसा बरसता है। मैंने किसी भी साधु संत की महिमा पैसे से, वैभव से, उसके त्याग से नहीं है, उसके ज्ञान से नहीं है, उसके वैराग्य से नहीं है, उसके संयम से नहीं है, उसकी साधना से नहीं है। उसके साधुपन की महिमा तो उसके त्याग वैराग्य संयम ज्ञान से होनी चाहिए ना। हमारे को किस चीज से महिमा आ रही है? बहुत अच्छा आप क्या भाषण देते हैं, देखो आप जबरदस्त, किस चीज की महिमा आ रही है आपको? बोलने की महिमा आ रही है, स्टाइल की महिमा आ रही है, भाषा की महिमा आ रही है, उनके ज्ञान वैराग्य की नहीं। हम साधुओं को भी किस दृष्टि से देखते हैं, और तो और हम तो भगवान को भी किस दृष्टि से देखते हैं पता नहीं। आप भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं? यदि आप भगवान को वितरागता से देखते हैं तो आपको भगवान को देखना आ गया है, कि भगवान का स्वरूप बतलाया है। यहाँ आगे वाली पंक्तियों में परमात्मा का स्वरूप बतलाया है, आप भगवान को कैसे देखते हैं? कभी हमारे को सोने के भगवान दिखते हैं पता है, कभी चांदी की प्रतिमा दिखती है, वो पता है आपको चांदी के भगवान है, कभी सोने के भगवान दिख रहे हैं, कैसे कैसे दिखते हैं। कभी भगवान प्रतिमा की विशालता दिखती है, कभी प्रतिमा छोटी सी दिखाई देती है उसकी महिमा दिखती है, कभी चौथे काल की प्रतिमा दिखती है, कभी कहता है बिल्कुल क्या नई प्रतिमाएं, कभी पत्थर की महिमा आती है, पाषाण की महिमा आती है, भगवान की वितरागता की महिमा नहीं आती। किस किस एंगल से नहीं देखते हम भगवान को? चले जाओ आप मूड बद्री वगैरह दक्षिण भारत में, रत्नों की प्रतिमाएं, और दूसरा पूछता है ये भगवान कितने के होंगे, ये क्यों खरीदना है भगवान, भगवान कितने के होंगे है? चांदी की महिमा आ रही है, सोने की महिमा आ रही है, वो रत्न देख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे हैं उसमें, अरहंत नहीं दिख रहे हैं। अरे हम अरहंतों की पूजा करते हैं, रत्नों की नहीं। हम सोने चांदी के पुजारी नहीं है, हम माणिक मोती के पुजारी नहीं है, सोने की प्रतिमा की महिमा नहीं है। सोने की प्रतिमा हो चाहे पाषाण की प्रतिमा हो, दोनों प्रतिमाओं में महिमा वितरागता की है। बात अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना हमारा चित्त किस चीज की तरफ आकर्षित होता है। हमारे यहाँ पास में भगवान की प्रतिमा है के लिए मंदिर में है, पार्श्वनाथ भगवान है ना हमारे यहाँ के पार्श्वनाथ, और एक वो कौन से चिंतामणि पार्श्वनाथ और सहस्रवण पार्श्वनाथ और पता नहीं कौन कौन से है, संकट हरण पार्श्वनाथ, उनकी ज्यादा महिमा है ना वो पार्श्वनाथ की। तो मैं आपसे पूछता हूँ, पार्श्वनाथ नाम के तीर्थंकर एक थे कि पार्श्वनाथ नाम के तीर्थंकर बहुत सारे हुए थे? एक ही थे ना, तो पार्श्वनाथ तो एक ही तीर्थंकर है ना, तो यहाँ के पार्श्वनाथ और वहां के पार्श्वनाथ अलग अलग हो गए क्या? नहीं नहीं, वहां के पार्श्वनाथ तो गजब है साहब, और यहाँ के पार्श्वनाथ में तो दम ही क्या है? क्यों? भगवान तो भगवान है, उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान की बात कर रहे हैं, वही फन वाली प्रतिमा की बात कर रहे हैं कि बिना फन वाली प्रतिमा की बात कर रहे हैं, सर्प के चिन्ह वाली प्रतिमा की बात कर रहे हैं हम, और पार्श्वनाथ भगवान ही है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कहीं के भी हो, यहाँ के हो चाहे वहां के हो। किसी क्षेत्र में किसी तीर्थंकर की महिमा विशेष क्यों? ये हमारी मिथ्या मान्यता है, ये हमारी विपरीत मान्यता है। हम भगवान को भी इन संयोगों से देखते हैं, और बहुत सारे लोग तो यहाँ तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन इंडिया में तो सब तीर्थंकरों को भगवानों को ग्रह से जोड़ने लग गए। इस ग्रह से जुड़े हुए ये, इस ग्रह से जुड़े हुए शनि के निवारण के लिए मंगल की समस्या होते, इनको पूजो, इनको अर्घ चढ़ाओ, इनका जाप करो, ये इनसे ऐसा होगा, ये भगवान कौन से, भगवानों को भी ग्रह के चक्कर में डाल दिया। जो सर्व ग्रहों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए, हमारा बस चले तो पता नहीं क्या कर बैठे हम। वो तो हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो उनको ऊपर से दाने से उतार करके नीचे ले आए। सबको ग्रहों से जोड़ दिया हमने, कौन सा ग्रह, कौन से पाप ग्रह, किसे कहते हैं पाप ग्रह? ग्रहों के चक्कर में उलझ रहे हो आप, सारी दुनिया उलझी है, फंसी है, न मालूम किन किन चक्करों में, ज्योतिषियों के चक्कर में, मंत्र तंत्र के चक्कर में, वास्तु शास्त्र के चक्कर में, कुछ नहीं है ये सब, सब सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए है। मैं ज्ञान का निषेध नहीं करता हूँ, ज्ञान होता है, सच्चा भी होता है, जाना भी जा सकता है, लेकिन उससे बदला नहीं जा सकता। ये सब मिथ्यात्व के अंतर्गत बातें कर रहा हूँ मैं, बहिरात्मा के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ ये, कि ऐसी बातें होती है। यदा वो जन्म पत्री देख करके भविष्य बता दे, हाँ बता सकते हैं, ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, लेकिन यदि वो ये कहते हैं कि आप इसको बदलने के लिए इस माला का जाप करो, आप इसको बदलने के लिए ये रत्न पहन लो, ये माला गले में डालोगे तो आपका ये संकट मिट जाएगा, तो वो भी पागल बना रहे हैं और तुम भी मूर्ख बन रहे हो। ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे आप बताइए, यदि उस चीज से वो बदल जाए तो इसका मतलब उसने जो पहले जाना था या तो वो गलत था। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? ये तो बहुत उलझी है सारी दुनिया, यहाँ तो फिर इतने झमेले नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो समझो आप भीड़ ही उसके यहाँ लगती है जो इस तरह के उपाय बताता है। पब्लिक आकर्षित होती है उनकी तरफ, लेकिन भैया ये हितोपदेश नहीं है। जिन साधुओं की आप यहाँ बात कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपने अंतरात्मा शब्द का प्रयोग किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वे हितोपदेशी है या नहीं है? यदि वे हितोपदेशी का मतलब हितकारी उपदेश देने वाले, जगत के जीवों का भला करने वाले, यदि वे हितोपदेशी हैं तो हमारा मतलब उनके चरणों में झुकता है। लेकिन हितोपदेश का मतलब समझ रहे ना, हितोपदेश का अर्थ ये नहीं है कि कोई श्रावक उनके पास में जाकर के पूछे, महाराज बहुत समय से बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई उपाय बतलाओ ना, और फिर महाराज ने कोई जाप बतला दिया, ये हितोपदेश नहीं है। क्यों नहीं है हितोपदेश? एक बार एक साधु थे वहां हमारे, और बहुत ऐसे उपाय बतलाते थे, और मैंने कह दिया उनसे, मैं मिला उनसे, मैंने कहा महाराज एक बात बतलाओ, आप लोगों को इतना उपाय बतलाते हो, लोगों का इतना भला करते हो, आपकी दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से लोग कहते हैं बहुत हितकारी है, और इनका उपदेश और इनकी इस तरह की बातें बहुत अच्छी बातें हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इन सब चीजों में जो लोग आकर के कहते हैं घर में सुख शांति का उपाय बतलाओ, परिवार में कैसे सुख शांति रहेगी, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, और आप उनको उपाय बतलाते हैं, सब सच बताना इन चीजों में सुख है या नहीं है? आप ये सब चीजें छोड़ करके मुनि बने हो ना, हाँ साधु क्यों बने हो? बिजनेस छोड़ करके बने हो ना, ये तो बिजनेस में सुख नहीं था ना, तो आप पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा और सुखी हो जाओगे? बिजनेस चल करके सुखी होने का उपाय ये हितोपदेश नहीं है। परिवार गृहस्थी के जंजालों में उलझ करके रहने को सुख शांति का उपाय बतलाना हितोपदेश नहीं है। हितोपदेश तो ये हो सकता है कि बेटा इसमें सुख नहीं है, कितना भी बिजनेस बढ़ जाए तो सुखी नहीं हो पाएगा, ये हितोपदेश है। राग रंग में आप कितने भी उलझे रहो लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख नहीं मिला हमारे को, ऐसा लगता है मानो पावक में घी डाला, मानो अग्नि में घी डाल दिया हो। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचता हूँ मैं कुछ शांति मिल जाएगी, कुछ आराम मिल जाएगा, कुछ चैन मिल जाएगा, फिर ऐसी दशा दिखती है। इसलिए आपने जिन अंतरात्माओं की बात कही है उनको अंतर से देखें, उनको बाहरी प्रवृत्ति से नहीं देखें, उनकी भाषा से देखें, उनके ज्ञान से देखें, उनकी साधना से देखें, उनकी विरक्ति और वैराग्य परिणति से देखें। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उनका अंतरंग भी बदला होगा। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का जिनके जीवन में अभाव हो गया है, वे मुनिराज भी अंतरात्मा हैं। और फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। देखिए यहाँ परमात्मा का स्वरूप बतला रहे हैं, कौन होते हैं परमात्मा। सक पांचवे छंद की दो पंक्तियां हो चुकी, तो उसके नीचे की तो हुए ना, जो उत्तम मध्यम और जगन त्रिविध के चौथे वाले में क्या कहा था, देह जीव को एक गिने बहिरात्मा चौथे छंद में। आप ये वाले लीजिए, ये बहुत ईजी है, इसमें सामने सिर्फ छंद छंद है, अपन छंद से बात कर रहे हैं ना, इसलिए बाकी व्याख्या तो अपन पढ़ नहीं रहे हैं। ये रहा, ये सिर्फ छंद आप देखेंगे तो आपको बात और स्पष्ट होगी। चार नंबर के छंद में मैं फटाफट, क्योंकि आज अपना अंतिम पीरियड है, मैं सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत बात तो इसमें आगे बढ़ लूँ मैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सात तत्वों का नाम लिया था, कुछ भी तत्व नहीं पढ़ाए, पब्लिक को यूं ही बेवकूफ बनाते हो। तो आपने पहले घोषणा कर दी कि सात तत्व पढ़ाएंगे, नौ पदार्थ नौ तत्व बताएंगे, और नौ तत्वों में से एक भी तत्व नहीं बताया पंडित जी ने पिछले सात दिन में है। एक हो गई ना जीव तत्व की चर्चा थोड़ी आदि, तत्व पूरी तो कर ले और किसी को चाहिए देखना। देह जीव को एक गिने, गिने शब्द का अर्थ एक माने, शरीर और आत्मा को एक माने के अंदर समझ लीजिए, खाने पीने की प्रवृत्तियों को अपना माने कि मैं खाता हूँ, मैं उठता बैठता हूँ, ये सारी प्रवृत्तियाँ भ्रमी है। ये सब शरीर चलता हुआ दिखता है, तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूँ। आप बतलाओ बचपन में क्या क्या करता था, जब छह महीने का था तब क्या क्या सोच समझ कर करता था, जो हाथ में आ जाती थी खाता था, कभी कागज खाता था, कपड़ा खाता था, खिलौने हो तो वो खाता था, गंदी चीजें कुछ भी कहीं भी पड़ा है, कहीं भी बिस्तरों में मिट्टी में जमीन में कभी गिर गया है, कुछ भी समझ नहीं थी ना, अपने आपके बारे में कुछ नहीं सोचता था। लेकिन बतलाऊ आपको, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता था महेंद्र भाई, निरंतर बढ़ता रहा। और जब 18-20 साल का हुआ, थोड़ा सा ये अपने आप को संभालने लगा तो बढ़ना बंद हो गया, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं बढ़ रही है, अभी स्टॉप हो गया, अब बहुत संभाल करके चलता है। नहीं नहीं कितना ध्यान रखता है, खाने में ध्यान रखेगा, पहनने में ध्यान रखेगा, कहाँ जाना, कैसे उठना बैठना, डाइटिंग करता है, बहुत बहुत एक एक चीज के बारे में कॉन्शियस रहता है, बहुत बहुत सतर्क सावधान रहता है। किस लिए, मेंटेन करके थोड़ा सा अपने, अब बेटा अब तेरे कंट्रोल के बाहर हो गया। जब ध्यान नहीं देता था तब बढ़ता था, और जब ध्यान देना शुरू किया तो बढ़ना बंद हो गया। माता के पेट में था तब क्या क्या सोच समझ कर खाता था, होता था ना वो सब अपने आप। एक घास खाता है क्या भोजन का, मुंह में रखने तक इसका कंट्रोल चलता है, और इसके बाद में उस घास का अंदर जाने के बाद में क्या होगा, कैसा परिणाम करेगा, उस एक ही घास में से कितनी जगह पर उसका परिणाम हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है ज्ञान दर्शन की। ये स्वतंत्रता हमारे को ख्याल में नहीं आती, बहिरात्मा को कर्तृत्व के अभिमान की वजह से ये बातें समझ में नहीं आती। कौन कर रहा है बतलाओ, उस एक घास को जो आपने खाया है, वो हड्डी भी खून भी मांस मज्जा मल मूत्र सब सब उसमें से सप्त धातुएं बनेगी अंदर, एक घास में से कितना उसमें से ब्लड बनना है, कितना मांस बनना है उसमें से है, कितना क्या क्या तत्व उसमें से निकलेंगे, कौन कर रहा है ये सब, कौन करने वाला है, इस मशीनरी को कौन चलाता है। ये जगत की स्वतंत्रता नहीं दिख रही है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं दिख रही है इस मशीन की। सब जगह पर इसको लगता है नहीं नहीं मतलब मेरे को, कोई व्यक्ति जिसका जन्म हुआ एक बालक का, उस बालक के हाथ में क्या क्या है, कौन सी जगह पर जन्म लेना, कौन से परिवार में जन्म लेना, माता पिता कौन से होना, कैसे होना, कोई बालक ये कह सकता है कि नहीं नहीं ये तो मेरी माँ जो है ये तो काली है तो मैं तो इसको माँ ही नहीं मानूंगा। फिर मानने नहीं मानने से क्या होता है, उसे प्रकृति से है। नहीं नहीं ये मेरा भाई है मैं इसको भाई नहीं मानता। फिर तू मत मान, भाई तो भाई है तेरा, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नेचर अच्छा नहीं है, कब ये ऐसा नहीं है, ये सुंदर नहीं दिखता है, मैं तो नहीं मान। तेरे हाथ में नहीं था चुनना कि मैं इसको भाई बनाऊं और इसको बहन बनाऊं, एक थोड़ा सा चुनने की थोड़ी सी दिखती है फैसिलिटी क्या वो दिखती है सच में, वो भी इसके हाथ में नहीं है। भाई बहन माता पिता पुत्र पुत्री परिवार के अन्य सदस्य देख देख कर ये सोचा होगा कि नहीं नहीं मेरे पिता को ये होने चाहिए, तेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी तेरे कंट्रोल में नहीं है। एक में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये तो मैं अपनी पसंद से संबंध बनाऊंगा। पत्नी बीवी जो समझो आप जो जब दो अपनी इच्छा रखता है लेकिन होता क्या है उससे, कुछ नहीं होने वाला, जो आनी है वो ही आएगी। बैरिस्टर चंपत राय जी का नाम सुना है आपने, गांधी जी के समय में थे, बहुत नाम था उनका, बहुत तत्वाभ्यासी थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, नाम था उनका। और उनका विवाह धोखे से पागल लड़की से कर दिया गया, पागल थी वो, धोखे से कर दिया गया। देखते तो थे नहीं पहले, ऐसा तो होता नहीं था कि पहले देखें मिले और 10-5 दिन मिलेंगे साथ में घूमेंगे और फिर उसके बाद में तो जो संबंध जैसा कर दिया जो भी हुआ हो, घर आई तो पता लगा कि पागल है। बहुत परेशान रहते थे, लोगों ने उनको कहा अरे ये तो आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तलाक दे दो, कायदे कानून जानते हो आपके लिए बाएं हाथ का काम है, तलाक दे दो इसको आप। पता है उनका क्या जवाब था, नहीं कि क्यों, कि पागल से विवाह हो गया है, मेरा जैसा उदय था ना उसके अनुसार ही हुई है व्यवस्था, और आप लोगों के कहने से कानून का सहारा लेकर के आज मैं इसको तलाक दे दूं और कोई अच्छी भली देख करके लाऊं और वो आने के बाद में पागल हो जाए तब क्या करूंगा, बताओ आप क्या क्या उपाय है। ये तो उदय की दशा है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई आने के बाद में पागल नहीं हो सकती क्या, हो ही सकते। ज्ञानियों का चिंतन कुछ अलग प्रकार से चलता है, उनकी सोच ही कुछ अलग प्रकार की होती है, हर चीज को हर घटना को देखने का उनका एक अलग ही नजरिया होता है, किस तरह से देख रहे हैं दुनिया को देखते हैं लेकिन किस तरह से देखते हैं, क्या अंतरात्माओं की बात, ज्ञानी लोग किस तरह से देखते हैं, कठिनाई की परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, संयोगों को कैसे देखते हैं, कोई उनको गालियां दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, अपशब्द कह रहा है, सुन रहे हो तो शांत भाव से क्या होता होगा आखिर, ऐसा कैसे सुन लेते होंगे, कैसे बर्दाश्त करते होंगे, उनको क्रोध नहीं आता है, उनको गुस्सा नहीं आता है, अंतरात्मा अंदर में आत्मापन की जिसे खबर है, अरे जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं उन्हें जगत के सब जीव आत्मा दिखते हैं, जो अपने आप को देह में परमात्मा देखते हैं उन्हें जगत के सब जीव परमात्मा दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति ने गाली दी, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, पागल है ये तो, धोखेबाज है, बेईमान है, उल्टा सीधा कह रहा है, और शांत भाव से ज्ञानी खड़ा, तुझे तुम्हारे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्या बात है ये तुम्हारे वो उल्टा सीधा बोलता है, पता है ज्ञानी क्या कहते हैं संदर्भ में, रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी ने प्रयोग किया ऐसा, वे कहते हैं किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को अपशब्द कहा, क्या कहा, किसी व्यक्ति ने हमारे को अपशब्द कहा, किसी ने हमारे को गाली दी, किसी ने हमारे को बुरा कहा, हमें ये कह दिया चोर है ये तो, अब हमारे को चोर कहा किसी ने, अब ज्ञानी क्या विचार करते हैं, वो ये कहते हैं इसने यदि हमको चोर कहा है तो विचार करना तुमने चोरी की थी या नहीं की थी, बेईमान कहा हमारे को, तो अंदर में विचार करना दिल से, इसने तुम्हारे को बेईमान कहा है तो तुमने बेईमानी की है या नहीं की है, सोचना जो भी इसने तुम्हारे को कहा है वैसा तुमने किया क्या, यदि तुमने चोरी की है तुमने बेईमानी की है और यदि तुम्हारे को चोर बेईमान कहता है तो गुस्सा करने की क्या बात है, नाराज होने की क्या बात है, इसमें गलती तो की थी ना तुमने, अरे नहीं नहीं साहब हमने की नहीं की, फिर भी कहता है तो फिर तुम क्यों गुस्सा करते हो जब तुमने की नहीं है तो तुम क्यों बिगड़ते हो? जब तुमने बेईमानी की नहीं है तो दूसरे के बेईमान कहने से तो बेईमान नहीं हो जाओगे, तुम क्यों गुस्सा करते हो? ऐसा होता है देखने का नजरिया, ऐसे सोचते हैं हमने दृष्टि ज्ञानी की। जगत को देखते हैं तो जगत किस प्रकार का दिखाई देता है, हमारे को साइंस की महिमा आती है, जगत की महिमा आती है, अपने आत्मा की महिमा नहीं आ रही है, उनको वस्तु स्वरूप की महिमा आती है। ज्ञानी कौन? जैसे आत्मा की महिमा आती है। ज्ञानी कौन? जो परद्रव्यं से भिन्न आपकी रुचि, वो ज्ञानी। वही बात लगाना, जब भी ज्ञानी की चर्चा आए ये बात ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि कौन होते हैं? आपकी रुचि, अपने आप में जिसकी रुचि है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। हमें तो कितने रिजल्ट से इनकी महिमा आती रहती है, और साहब क्या चमत्कार है साहब, आजकल का तो जमाना कितना गजब, एक से एक चीजें देखो आप। अरे भाई साहब ये तो प्रकृति की बराबरी नहीं कर सकते कुछ भी, कितना भी पैकिंग का जमाना हो लेकिन अनार की पैकिंग खुलने के बाद में उस तरह की पैकिंग दोबारा नहीं हो सकती। अनार है, संतरा है, आप समझिए, और जितने फल फ्रूट्स हैं, आप उनकी पैकिंग, मक्का है उसके दाने किस तरह से वो कवर्ड मिलती है हमारे को, किस पैकिंग में आती है, आप उसको खोल दो। अब खोलने के बाद में साइंस किसी लेबोरेटरी में ले जाकर के कहो कि इसको वैसी की वैसी पैकिंग चाहिए हमारे को जैसी पैकिंग वहां से खेत में से आई थी, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता है। कितनी भी तरक्की कर ले हम, लेकिन उस चीज की बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। तो किस चीज की महिमा होनी चाहिए? कि महिमा अपने आत्मज्ञान की होनी चाहिए। जिनके हृदय में आत्मज्ञान होता है सैकड़ों रिद्धियां उनके जीवन में सहज प्रकट हो जाती है, वे रिद्धियों की परवाह नहीं करते। ज्ञानी जीव रिद्धियों की परवाह नहीं करते, रिद्धियां उनके जीवन में हो जाती है प्रकट। रिद्धियों से मतलब नहीं है उनको, क्या अंतरात्मा जो है कैसे होते हैं, कोई गाली देने वाला हो, कोई आर्ग उतारने वाला हो, कोई उल्टा सीधा बोलने वाला हो, कोई प्रशंसा करने वाला हो, सब में संभाव रहता है उनका। यही दौलत राम जी चट्टीलाल में कहते हैं, अरि मित्र महल मसान कंचन कांचन निंदन स्तुति करण, अरि धाव तारण अति प्रहारण में सदा समसाधरण। ऐसा होता है मुनि राजाओं का जीवन। अरि मित्र, शत्रु सामने हो चाहे मित्र सामने हो, दोनों विरोधी है ना। शत्रु आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और मित्र सामने हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महल मकान, महलों में हुए से शमशान में, महलों में आए आहार के लिए से शमशान में बैठे हो ध्यान के लिए, क्या फर्क पड़ता है? कंचन कांच, सोना हो से कांच के टुकड़े हो, निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाले हो चाहे स्तुति करने वाले हो, अर्घाव तारण आती प्रहारण, अर्घ से आरती उतारने वाले हो चाहे तलवार से प्रहार करने वाले हो, सदा समसाधरण, सब परिस्थितियों में समता भाव धरते। ऐसा होता है ज्ञानियों का जीवन, हर परिस्थिति में समता भाव, कितना सहज रह पाते हैं, ये जैन दर्शन सहज रहने की कला सिखाता है। आप कितना सहज हैं बाहरी परिस्थितियों में, आप कितने सहज रहते हैं, कितने नॉर्मल रहते हैं, ये सिखा रहा है हमारे को जैन दर्शन। और जिसने सहज रहना सीख लिया वो अंतरात्मा बन गया। अंतरात्मा के बाद में ये हो गई बात, यहाँ देह जीव को एक उत्तम मध्यम जगन, तीन प्रकार के अंतरात्म ज्ञानी। अब वो जो उत्तम मध्यम जगन अंतरात्मा है, इन तीनों की परिभाषा बतला दी। चंद नंबर पांच, मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रती। उत्तम कौन थे? चौथी की अंतिम लाइन में, दो प्रकार के संग के बिना, संग मतलब परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग, ये बहुत मार्मिक बात कही है। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, द्विविध संग बिन, द्विविध दो प्रकार के संग माने परिग्रह, दो प्रकार के परिग्रह से रहित। कौन कौन से दो परिग्रह? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। सारे जगत को बाहर का परिग्रह दिखाई देता है, अंदर में मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ भी परिग्रह है, ये हमारे को पता नहीं है, वो भी तो परिग्रह है, 24 भेद होते हैं परिग्रह के, परिग्रह के 24 भेद होते हैं, 10 प्रकार के परिग्रह तो बाहरी परिग्रह हैं, और 14 प्रकार के मिथ्यात्व, क्रोधमान माया लोग, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा आदि, ये सब अंतरंग परिग्रह हैं। तो ज्ञानियों के अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव होता है। हम तो बहिरंग परिग्रह कोई परिग्रह समझते हैं। बोलो हम ज्यादा परिग्रही हैं कि कल हमने चक्रवर्ती की थोड़ी बहुत बात कही थी वो ज्यादा परिग्रही है? चक्रवर्ती सुनी थी आपने चर्चा? चक्रवर्ती ज्यादा परिग्रह है? अपन ज्यादा परिग्रही है, क्या बात कर रहे हैं, इतना है आपके पास में है?
उसकी बात है अपने मानता नहीं।
24 प्रकार के परिग्रह हैं, 24 प्रकार के परिग्रहों में से 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रहों में पहला मिथ्यात्व, उसके बहिरंग 10 के 10 हैं और अंतरंग में मिथ्यात्व नहीं है। 24 में से 23 परिग्रह है उसके, और हमारे पास में कौन सा नहीं है? पूरे 24 है। बोलो कैसा लगता है अपने को? अरे हाँ, कहाँ 96,000 रानियां और कहाँ 6 खंड की विभूति और कहाँ उसकी ताकत और कितना उसका वैभव, कहाँ चक्रवर्तियों की बराबरी हम कर पाएंगे? अरे बराबरी करने का सवाल नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि वो जो है उसके पास में 24 में से कितने हैं और आपके पास में 24 में से कितने हैं, ये बताओ। धन धान्य सोना चांदी घर बार महल मकान सब कुछ तो है हमारे पास में, कपड़े लत्ते बर्तन सब तो परिग्रह है हमारे पास में, तो कितने हैं? ये पूरे के पूरे 24 है, ज्यादा परिग्रही है हम चक्रवर्तियों से, ज्यादा परिग्रही है। कहां उतरेगी ये बात गले? मिथ्यात्व नहीं है, वो सबसे बड़ा परिग्रह है, वो परिग्रह का बाप है, परिग्रह का दादा है, वो पाप का बाप ही नहीं पाप का दादा है। बाकी पाप छोड़ने की तरफ तो हमारी बुद्धि जाती है, लेकिन मिथ्यात्व रूपी महापाप छोड़ने योग्य है ये हमारे लक्ष्य में नहीं आती। हिंसा करने वाले को बुरा समझते हैं, झूठ बोलने वाले को बुरा समझते हैं, चोरी करने वाला, विचार करने वाला, ये सब हमारे को बुरे दिखाई देते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि वो महापापी है, वो नहीं दिख रहा है हमारे को। मिथ्यात्व यदि साथ में है तो थोड़े दिन के लिए झूठ चोरी हिंसा ये सब त्याग कर देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो टेम्परेरी त्याग हुआ है, वापस आ जाएगा लपेटे में। अंदर में मिथ्यात्व बैठा हुआ है ना, अंदर में मिथ्यात्व रूपी बिल्ली निकाले नहीं और बाहर में खाली करता रहे तो क्या होगा? कुएं में बिल्ली गिर गई मान लो, अब गांव वालों को पता नहीं, और पानी निकालते हैं और जहरीला पानी निकलता है, गंदा पानी आता है, दुर्गंधित पानी आता है, तो क्या करें? ऐसा पानी बहुत गंदा हो गया है, एक काम करो पानी खाली कर दो, पूरा कुआ खाली कर दिया, साफ कर दिया बिल्कुल, और दूसरे दिन जो पानी आ रहा है वो पानी फिर गंदा, बिल्ली बैठी है अंदर, क्या वो नहीं निकाली? से ऊपर ऊपर से कितनी भी सफाई करो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से कितनी सफाई कर ले हम, कितने पानी बदल ले, कितनी बार बदल ले, ऐसा ही हो रहा है हमारे, ऐसे बदलते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से बदल रहे हैं और इस बदलने के चक्कर में भाव बदलते जा रहे हैं। मनुष्य भाव जो है ये भेद ज्ञान करने के लिए मिला है, देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए मिला है हमारे को, ये ऊपरी त्याग व्याग के चक्कर में नहीं। ये कोई समझना ही नहीं चाहता है कि छोड़ने में धर्म नहीं और जोड़ने में पाप नहीं, घबराना मत क्या कह रहा हूं मैं, जोड़ने और छोड़ने के चक्कर में लगे सारी दुनिया, जोड़ जोड़ करके सुखी होना चाहते हैं, छोड़ छोड़ करके सुखी होना चाहते हैं, न जोड़ने से सुखी होते हैं न छोड़ने से सुखी होते हैं। मैं जोड़ सकता नहीं और मैं छोड़ सकता नहीं, इस मान्यता के होने पर सच्चा सुख प्रकट होता है, तो सम्यक दर्शन है, वो सच्ची मान्यता है, सच्ची श्रद्धा है, ये अंतरात्माओं की ऐसी श्रद्धा होती है। द्विविध संग भिन्न शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, दो प्रकार के संग से रहित शुद्ध उपयोगी मुनिराज, ये शर्त लगा दी है, उत्तम अंतरात्मा है। मध्यम कौन है? मध्यम अंतरात्मा है जे देशव्रति अनगारी, ठीक है। जघन्य कौन है? अविरत समदृष्टि। तीनों मोक्ष मार्गी है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तीनों चलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सकल निकल परमा समद्वय विदितिन में गाति निवारी, श्री हरि अंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। सकल और निकल दो प्रकार के परमात्मा होते हैं। सकल परमात्मा, कल माने होता है शरीर, सकल माने शरीर सहित परमात्मा, और निकल कल जिनका निकल गया हो, कल मतलब शरीर, निकल माने शरीर जिनका चला गया, ऐसे दो तरह के परमात्मा। श्री हरि अंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, यारंत परमात्मा तो सकल परमात्मा है, और निकल कौन है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। कौन से है निकल परमात्मा? ज्ञान शरीरी, ज्ञान शरीर वाले, त्रिविध कर्म मल वर्जित, तीन प्रकार के कर्म मल से जो वर्जित हैं, जो रहित हैं। कौन से तीन प्रकार के कर्म मल से रहित हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणी आदि, भाव कर्म राग द्वेष आदि, और नौ कर्म शरीर आदि। शरीर आदि नौ कर्म से जो रहित हो गए हों, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म से जो रहित हो गए हों, और अंदर में राग द्वेष आदि भाव कर्मों से जो रहित हो गए, उसका नाम मुक्ति है, वो असली मुक्ति है। हरिभद्र स्वामी ऐसा कहते हैं, मुक्ति कैसे है, मुक्ति कैसे होती है, इस मुख्य अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है? तो हरिभद्र सूरी ऐसा कहते हैं, न श्वेतांबरत्वे न दिगंबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्षपाताश्रयेण मुक्ति कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। न श्वेतांबर पंथ से मुक्ति है, न दिगंबर पंथ से, न तर्कवाद से, न तत्ववाद से, न किसी पक्षपात के आश्रय से मुक्ति है। तो फिर मुक्ति कैसे होती है? कषाय मुक्ति का नाम मुक्ति है। राग द्वेष से मुक्ति को जिन मत में मुक्ति कहा है, ये मुक्ति का मार्ग है। और ये जो परमात्मा है, ये तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित होने से वास्तव में सिद्ध परमात्मा ही असली परमात्मा है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल शरीर रहित, ते हैं निकल अमल मल रहित परमात्म भोगे शर्म अनंता। शर्म शब्द का अर्थ होता है सुख, तो शर्म भोगते हैं, भोगे शर्म अनंता माने सिद्ध परमात्मा अनंत सुख भोगते हैं, और मिथ्या दृष्टि है बेशर्म। बेशर्म मतलब दुखी, शर्म मतलब सुख, और बेशर्म मतलब दुखी। ये मिथ्या दृष्टि का पर्यायवाची शब्द है बेशर्म। सब मिथ्या दृष्टियों को हम बेशर्म कह सकते हैं। अब सारभूत बात कहते हैं, ये जो जीव तत्व की चर्चा है ना, ये जीव तत्व की चर्चा का सार बतलाते हैं यहाँ, क्योंकि आगे फिर अजीव तत्व से चर्चा प्रारंभ हो रही है। अभी जीव तत्व के बारे में क्या कह रहे हैं? बहिरातम ताहे ये जान तजी अंतर आतम हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। सार बतला दिया, जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं, जीव तत्व का स्वरूप बतला रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी ने चार अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन बतलाया, तत्वा सूत्र में पहला दूसरा तीसरा चौथा चार अध्याय, चार चैप्टर पूरे जीव तत्व के लिए समर्पित कर दिए। कैसा होता है जीव, क्या है जीव तत्व का स्वरूप? दौलत राम जी ने यहाँ बहुत संक्षेप में तीन भेद करके उनका वर्णन कर दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा जिनकी आत्मा ने परम अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, ये परमात्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। ये तीनों ही आत्मा की अवस्था है। बहिरात्मापन भी आत्मा की अवस्था है, अंतरात्मापन भी आत्मा की अवस्था है, और परमात्मा कौन है, कौन होते हैं परमात्मा? परमात्मापन भी आत्मा की अवस्था ही होती है, और कोई नहीं होते परमात्मा। आपको क्या लगता है परमात्मा कौन है? परमात्मा तो कुछ अलग, परमात्मा अलग नहीं होते। जो जीव पुरुषार्थ करते हैं वे परमात्मा बन जाते हैं। जैन दर्शन की महानता यही है कि अकर्तावाद की चर्चा करता है। भाई साहब, ये जैन दर्शन के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर सारा जिनागम टिका हुआ है। यदि आपने इनको थोड़ा बहुत भी हिला दिया तो समझ लीजिए आप संपूर्ण जिन जातन रह जाएगा। अकर्तावाद, क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु स्वतंत्रता, कण कण की स्वतंत्रता, ये बतलाता है जैन दर्शन। एक एक कण कण की स्वाधीनता और स्वतंत्रता को बतलाता है। सब स्वतंत्र हैं, सब, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान की वितरागता वो आकर्तापन का संदेश देती है। ये पता है क्या कहता है? अरे भाव, भगवान तो वितरागी है, वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन हम तो रागी हैं, हम तो कर सकते हैं ना, अरे भगवान से बड़ा हो गया। हम कह रहे भगवान ही नहीं कर सकते, तो फिर हम आपकी क्या बात करेंगे, हम कर सकते हैं। तो गंभीरता से विचार करो ना थोड़ा सा। भगवान जो अनंत शक्ति के धनी है, भगवान जो अनंत वीर, अनंत सामर्थ्य के धनी है, हम कह रहे वो नहीं कर सकते, फिर मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो रागी हूँ। तू है कौन करने की बात कह रहा है? कोई नहीं कर सकता, कोई करने धरने का काम नहीं है यहाँ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं अपने आप करता हूँ जो करता हूँ। प्रत्येक वस्तु का परिणाम अपनी योग्यता से होता है। यहाँ एक्ट ऑफ गॉड नहीं चलता, कुछ भी भूकंप बाढ़ भगवान की तरफ से हो, क्या ऐसा नहीं, कोई भगवान नहीं है ऐसा। भूकंप लाने वाला, बाढ़ लाने वाला, ये बिल्डिंग किसने गिरा दी, ये दुकान किसने गिराई, इन्हें सारे तो भगवान है, इसका करता तो कोई भगवान नहीं है। भगवान को यही पड़ी है, क्या करेंगे बतलाओ भगवान। ये खुद पाप करता है, विकार करता है, राग द्वेष करता है, मिथ्यात्व, अज्ञान, दोष, अपराध, पाप, ये सब करके भगवान के पास में आता है और भगवान से कहता है, हे भगवान मेरे पाप दूर कर दो। भगवान कहते हैं, बड़ा आया है, गंदगी तू फैलाएगा, झाड़ू लगाने मुझे बुलाएगा। ये राग द्वेष की गंदगी कितने फैलाई है, ये मिथ्यात्व की गंदगी और पाप की गंदगी कितने फैलाई है, तूने व्यक्तिगत तूने किया है ना, ये यहाँ सब किया तो मैंने ही है, कर अपने आप पाप, मेरे से क्या अपेक्षा रखता है। कि प्रभु आप अनंत सुखी हो, थोड़ा बहुत सुख बरसा दो, क्या फर्क पड़ता है आपके आनंद में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है, मैं मेरा सुधार हो जाएगा, तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, अरे भैया गलत दिखाने आ गया है तू, तेरी तरह मैं भी इसी तरह दर दर की ठोकरें खाता था, मैं भी पता नहीं कितने ईश्वरों के चक्कर लगाता था और कितनों से सुख की तलाश नहीं करता था, सुख की भीख नहीं मांगता था, बहुतों के सामने किया लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर एक सतगुरु ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि भैया दुनिया में कोई तुझे सुख नहीं देगा, तू अपनी शरण में चले जा और सच्चे सुख को प्राप्त कर ले। और मैंने उनकी गुरु की शरण में जाकर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, अपनी आत्मा की शरण लेकर अपने पुरुषार्थ से सच्चे सुख की प्राप्ति की है, बहुत पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, अब मैं नहीं दूंगा, तुझे चाहिए तो तू भी ऐसा ही कर ले। क्यों दे, ये कितना स्वाधीनता का मार्ग है, हर व्यक्ति के पास में है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, काय वय गंगाल, गांठ खोलने की नहीं। अपनी गांठ में जो रत्न बंधे हैं अपने पल्ले में, उसको देखा नहीं तो कंगाल क्यों बना हुआ है? खोल करके देखा ही नहीं, अंदर में रत्न है, ज्ञान आदि निधियां अंदर में मौजूद है, वो रत्न देख तो सही एक बार। वो खजाना जो अंदर में है, अपूर्व खजाना है, ऐसा खजाना है जो ज्ञानी जी अंदर में देखते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बाहर में निकलने में मानो प्रमादी हो जाते, निकलना नहीं चाहते, स्वरूप में विश्रांति करना चाहते हैं। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? अंदर में पुष्प वाटिका में विहार कर रहे हैं, चैतन्य की सुरभि रूपी पुष्प वाटिका में विहार करते हैं, ऐसा उनका ज्ञानियों का जीवन होता है। तो भगवान को देखते हैं, भगवान की नापाद दृष्टि को देखते हैं और मानो वो उपदेश दे देते हैं, चले जा अपने पास में, अपने स्वभाव को देख, अपने आप को देख। परमात्मा को देखना किस लिए? अपने आप को देखने के लिए, इसलिए देखना परमात्मा को। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, बस ये उपाय है पूछना। जिन दर्शन करके निज दर्शन प्राप्त करना है। देखो जो काम उन्होंने किया वो काम हम करेंगे तो उन जैसा बन जाएंगे, सीधी सी बात है। हमें बतलाओ, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और मुझे उन जैसा बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो क्या करूं मोहित भाई बताओ? उसकी कितनी आरती उतारूं कि उस जैसा बन जाऊं? क्या बात करते हो, उसकी आरती उतारने से नहीं बनूंगा तो फिर उसके हाथ पांव दबाने से तो बन जाऊंगा, उसकी पूजन करने से भी नहीं, और उसके कुछ दीपक जलाएं, कुछ मोमबत्ती आरती कुछ जलाएं, कुछ क्या कहते हैं कुछ ना कुछ करें, उसकी आराधना, उसके नाम की जाप करें, माला फेरें, सब तो उस जगह बन जाएंगे ना। क्या करते हो आप लोग, ऐसे नहीं बन पाएंगे हम लोग प्रोफेसर सच में। कि देखो वहां तो सब होशियार है और जब यहाँ परमात्मा बनने की बात आती है तो सभी नहीं, सब में उलझे सामने सामने। अब सच में जब प्रोफेसर बनने का उपाय किसी प्रोफेसर की पूजा करना नहीं है, प्रोफेसर बनने का उपाय वो प्रोफेसर कैसे बनाए, किस मार्ग से बनाए, किस विधि से बनाए, उस विधि को अपनाएंगे तो उन जैसा बन पाएंगे। उनकी पूजा भक्ति आराधना करने से काम नहीं चलेगा। किताब उनके घर में जाकर के बर्तन साफ कराएं तब तो हो जाएंगे, सब्जी बनाए, खाना पकाया है उनके यहाँ बहुत खुश हो जाते हैं साहब, तो हमारे से कितना भी खुश हो जाए। भगवान की भक्ति करने वाले, भगवान की शरण में आने वाले भगवान दास बनते हैं, भगवान नहीं। तुम्हें भगवान बनना है कि भगवान दास बनना है? वहां सबको समझ में आती है, लेकिन जब हम यहाँ कहते हैं कि पूजन करने से ये मार्ग नहीं मिलेगा तो समझ में नहीं आती बात। तो लगता कैसे नहीं मिलेगा साहब, आप पूजन करने का निषेध करते हो। हम निषेध नहीं कर रहे, हम सच्चाई बतला रहे हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि हम पूजन करने के लिए मना कर रहे हैं। आप पूजन करें लेकिन पूजन करके ये नहीं समझ ले रहे कि इससे मार्ग मिल जाएगा। हम प्रोफेसर के रेस्पेक्ट करने से मना नहीं कर रहे, आप उसके रेस्पेक्ट बराबर करें, करना भी चाहिए, लेकिन उससे आप प्रोफेसर बन जाएंगे इस धोखे में न रहे, ये मिथ्या भ्रांति अपने दिमाग से निकाल देंगे। हाँ। हाँ सही बात है, इसमें क्या कह सकते हैं सभी। मैं इसीलिए पूजन करने का निषेध नहीं कर रहा, लेकिन पूजन करके संतुष्ट होने का निषेध है। जब जब शास्त्र स्वाध्याय में, सत्संग में पुण्य को हे कहा जाए, शुभ भाव को हे कहा जाए, इन सब क्रियाओं के बारे में कहा जाए कि ये छोड़ने त्यागने योग्य है, तब तब ये समझना कि उनको अच्छा मानना छोड़ने योग्य है, उनके प्रति उपादेय बुद्धि त्याग करने योग्य है, उनको छोड़ने की नहीं कह रहे, वो तो छूटेगी भूमिका अनुसार। क्या हमारे छोड़ने से नहीं छूटेगी, भूमिका अनुसार छूटेगी, धीरे धीरे छूट जाती है। जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाएगी, हो जाती है। बालक है, बदमाशी करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है समझ जाता है, तो उसकी वो दशा मिटती चली जाती है। जैसे जैसे समझ आएगी वैसे वैसे ये सारी चीजें भी छूटती चली जाएगी। लेकिन छोड़ने योग्य जो नहीं मानता हो, जो अटक गया हो, वो तो आगे कैसे बढ़ेगा? परमात्मा बनने का कितना सुंदर मार्ग बतला दिया है यहाँ, जीव तत्व का कितना सुंदर स्वरूप बतला दिया है यहाँ पर, बहिरात्मा कौन और अंतरात्मा कौन, कोई दूसरा नहीं बतलाएगा। हमें किसी दूसरे से संदिग्ध दृष्टि होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लोग कहें ये संजीव गोदा सम्यक दृष्टि नहीं चाहिए हमारे को। आप अपनी पहचान अपने अंदर करें, हम बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है। और क्या कह दिया यहाँ सारे इन्होंने दौलत राम जी ने, तीनों का स्वरूप बतलाने के उपरांत, परमात्मा का स्वरूप बतलाने के उपरांत क्या स्वरूप बतला दिया था परमात्मा का? वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता माने अकर्तावाद, वीतरागता माने कर्ता धर्ता नहीं है, वीतरागता माने वो ये कह रहे हैं तुम कितना भी मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हारी दरबार उठा के नहीं देखता, क्या होगा? ऐसा कहते हैं भगवान। तो फिर किसकी शरण में जाएं? आप बता दो किसकी शरण में जाएं आप? जगत में लोग दिखते नहीं है, और कोई दिखते हैं उनके लिए आप कहते हो कि ऐसा है वैसा है, कैसे पहचान करेंगे? परमात्मा का स्वरूप आप बतला रहे हो, वो शरण देते नहीं है, क्या करें हम? निश्चय शरण आपको आप व्यवहारे परमेष्ठी जाप, आत्मा ही शरण है। अरहंत की शरण का मतलब क्या है? अरहंतों की शरण का मतलब क्या है? चलो ये बतला दो मेरे को कोई, अरहंत कौन है, कहाँ मिलेंगे अरहंत, कैसे मिले? अपन बोलते हैं चत्तारी शरण पवज्या भी बोलते हैं आप लोग कभी? चत्तारी शरण पवज्यामी अरहंते शरण पवज्यामी सिद्धे शरण पवज्यामी। अब हम आपसे पूछते हैं सिद्धे शरण पवज्यामी, सिद्ध की शरण में जाता हूँ, जाओ सिद्धों की शरण में, कैसे जाओगे बताओ? कैसे जाएं सिद्ध की शरण में? अरंत की शरण में कैसे जाएं? आचार्य की शरण तो समझ में आती है कि कोई आचार्य होंगे तो उनकी शरण में चले जाओ, टिकट बनवा लो, कहाँ है किसी से पूछ लो और वहां तक चले जाओ। आचार्य की शरण में चले गए, उपाध्याय की शरण में चले गए, साधु की शरण में चले गए, अरंत की शरण में कैसे जाएं और सिद्ध की शरण में कैसे जाएं? कैसे जाएं हम? नहीं मैं बात बताता हूँ आपको, बात बताना है कुछ बोलना है। पहले ये नक्की करो कि अरंत है कौन, ये तो नक्की करें अपन, तब तो फिर उनकी शरण में जाएंगे। जब तक हमें अरंत का पता ही नहीं है, अरंत की शरण में जाने की बात कर रहे हैं, तो अरंत कौन है? कि साहब अरंत तो वो होते हैं समो शरण वाले, कि नहीं नहीं जरा देख रहे हो, देखो अच्छे से देखो समो कौन है, अरंत कौन है, करे ये देखो। अरंत वो होते हैं जिनके छत्र होता है तीन सर पर, पीछे भामंडल होता है, दोनों तरफ चमड़ ढोड़े होते हैं। नहीं मिस्टेक हो रही है, वापस देखो ध्यान से देखो कौन होते हैं अरंत, अरंत कौन है उनमें से? छत्र का नाम अरंत है कि चमड़ का नाम अरंत है? नहीं छत्र चमड़ अरंत थोड़ी ना, तो फिर अरंत कौन है ये बताओ? इन कमल से ऊपर जो बैठे हुए अधर परम औदारिक जिनका शरीर है वो अरंत है? सच में वही अरंत है जिनके नेत्रों की पलकें नहीं झपकती, चारों तरफ मुख दिखाई देता है, नख और केश नहीं बढ़ते हैं, शरीर में दूध के समान सफेद खून होता है, परम औदारिक जिनका शरीर कहा गया है, निगोद रहित जिनका शरीर है, ऐसे जो सामने वही तो होते हैं ना अरंत? कि नहीं नहीं अभी भी मिस्टेक हो रही है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाले होते हैं अरंत, शरीर वाले नहीं होते। अरंतों को शरीर से देखा हमने, अरंतों को संयोगों से देखा, अरंतों को छत्र चमर भामंडल से देखा, हमारे को अरंतों को देखना ही नहीं आया। हम परमात्मा को देख ही नहीं सके कि परमात्मा कैसे होते हैं। शरीर वाले नहीं होते परमात्मा, परिग्रह वाले नहीं होते परमात्मा। जो शरीर दिखाई दे रहा है और जो छत्र चमर भामंडल आदि का जो भी सिंहासन आदि का परिग्रह दिखाई दे रहा है, इन सबसे रहित होते हैं परमात्मा अंदर में, अनंत चतुष्टय स्वरूप। अच्छा अनंत ज्ञान सुख दर्शन सुख वीर्य वाले होते हैं क्या अनंत परमात्मा? हाँ। तो किसकी होती है वो अनंत ज्ञान दशा? ज्ञान वालों की होती है, अनंत दर्शन दर्शन वालों की, अनंत सुख सुगुण की पूर्ण अवस्था है, पर आत्मा की अवस्था है कि हाँ अरहंत अवस्था आत्मा की अवस्था है। एक आत्मा की एक शुद्ध अवस्था का नाम है कि सिद्ध अवस्था क्या है? कि सिद्ध अवस्था आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है, पूर्ण शुद्ध अवस्था है, सकल कर्म से रहित अवस्था, सो शिव फिर सुखकारी, समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम सिद्ध परमात्मा है। हाँ बताओ, जो जितने सिद्ध परमात्मा हैं, वो सिद्ध परमात्मा सिद्धों का स्वरूप या प्रतिमाएं जैसी बनती है, तो वैसा का वैसा स्वरूप परमात्मा बनने का स्वरूप है। हमारी जैन प्रतिमाएं जोड़ जोड़ करके नहीं बनती, तोड़ तोड़ कर बनती है। पता है कि नहीं आप लोगों को, प्रतिमाएं कैसे बनती है, भगवान कैसे बनते हैं? एक पत्थर का शिला बनता और एक मूर्तिकार ने उस पत्थर की शिला से भगवान बना दिए। कैसे बनाए होंगे उसने भगवान? क्या किया उसने? इसलिए भगवान पना तो था उसमें क्या, और जो उसमें भगवान पना नहीं था ऊपर ऊपर, वो उसने उतार दिया और अंदर में भगवान जो घर से निकल गया। अपने बच्चे को सिखाता हो ना मूर्ति कैसे बनाते हैं, कोई मूर्तिकार सिखाता है अपने बच्चे को और बच्चा चलाता है, और बेटा रुकना एक मिनट, ये क्या हुआ, सीधे कान टूट जाएगा यहाँ, पिता जी यहाँ कहाँ कान है? नहीं बेटा, तेरे को इस पत्थर में भगवान की मूर्ति दिखना चाहिए। जिनको उस पत्थर में भगवान की मूर्ति दिखती है, वे ही असली मूर्तिकार हो पाते हैं क्या? तो जिनको देह सहित रहते हुए भी देह देवर में भगवान दिखता है, वे भगवान बन पाते हैं, वे अंतरात्मा होते हैं। देह रहेगी लेकिन देह से भिन्न देखना, भगवान बनने के लिए कुछ ऊपर से ओढ़ना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ पहनना नहीं है। इधर कौन से कपड़े ऊपर से पहने, कौन सा दुपट्टा ओढ़े अपन की भगवान बन जाए, ओढ़ना नहीं है, जो है उनको सबको उतारना है, सब परिग्रह का त्याग करना है। और तो और शरीर भी नहीं रहेगा, द्रव्य कर्म भी नहीं रहेंगे, भाव कर्म भी नहीं रहेगा। अरे सर्व प्रकार से जहाँ निर्वृत्ति हो जाएगी, खालिश आत्म तत्व जहाँ बचेगा, उसका नाम है परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। कौन होते हैं परमात्मा? जोड़ जोड़ करके नहीं, तोड़ तोड़ करके। कैसे बनती है हमारी प्रतिमा? प्रतिमा बनने की विधि परमात्मा बनने को सिखाती है, इसलिए हम दर्शन करने के लिए आते। उनको देख करके हमारे को पता लगता है भगवान कैसे बनते हैं, प्रोसेस क्या है, ऐसा क्या हुआ आखिर कि ये पत्थर भगवान बन गया, पूज्य हो गया, क्या फर्क है? उतार दिया आवरण था, वो उतार दिया। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, वो भीतर आत्मा से देखें परमात्मा को, फिर देखिए आगे क्या कहते हैं और कैसा मार्मिक स्वरूप। निष्कर्ष दे दिया, जीव तत्व की चर्चा का निष्कर्ष बतला दिया, क्या करना योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। पहले वो समझ में आ गई अपने को, शरण लेने योग्य जो बात चल रही थी, अरियंत कौन है, बोले आत्मा की अवस्था। तो सिद्ध कौन है, सूर्य आत्मा की अवस्था है। तो आचार्य कौन है, किताब पीछे कमंडल वाले शिष्यों को पढ़ाते हैं, दीक्षा देते हैं। अरे तुम गलत देख रहे हो यार, फिर वही मिस्टेक कर रहे हो। कैसे देखना है बोलो आचार्यों को? शरीर से देखें क्या आत्मा की अवस्था है? उपाध्याय कौन है, साधु कौन है? आचार्य कुंद स्वामी मूल गाथा में कहते हैं, हरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेशी पन पांच, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है चरण। कौन चरण है इन सब में, कौन चरण है? साधु की चरण का मतलब क्या है, आत्मा की चरण। आचार्य उपाध्याय की चरण का मतलब क्या है, आत्मा की चरण। तो अरहंत सिद्ध की चरण का मतलब क्या है, अरे अपनी आत्मा की शरण लेना ही अरहंत सिद्धों की शरण लेना है। असली बात तो ये है, मूल मुद्दे की बात तो ये है, व्यवहार में और उपचार में हम कुछ भी बातें कहते रहे लेकिन सच्चाई यही है। कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में तो मालूम किस किस तरह की बातें नहीं कह देते हम, व्यवहार में क्या क्या कथन नहीं कहते हम। अरे साहब पंडित जी को अपना ही घर समझना, ठीक है हम अपना ही समझ रहे हैं, आप वो पेपर कब साइन करके दे रहे हैं? अपना ही समझने का क्या मतलब है? तो व्यवहार में आप कुछ भी कहते रहो, हे प्रभु आप संकट मोचन है, आप दुखियों के दुख दूर करने वाले। अरे व्यवहार कथन है, बहुत स्थूल कथन है, और हम तो इन कथनों से भी बचना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी मान्यता को पुष्ट करते हैं। आप सावधान रहे, अलर्ट रहे, ऐसे स्तुतियों की अपेक्षा जो भीतराग भाव और अकर्ता भाव का पोषण करने वाली स्तुतियां हैं उनका सहारा लें। भगवान को देखना भगवान बनने के लिए। ठीक है, बढ़े आगे अपन, तो चलें आगे, है ना, बहुत दो तीन चार मिनट बचे हैं। देखो क्या कहते हैं आगे, बहिरा समता है जान तजी, गजब बात कह दी तीनों आत्माओं में। अभी तीन अलग अलग, अरे तीन अलग अलग आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा की तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। बहिरात्मा प्रारंभिक अवस्था है, अंतरात्मा कुछ सुधरी हुई अवस्था है, और परमात्मा परम पवित्र निर्मल अवस्था है। ये तीन अवस्थाएं उस एक आत्मा की, हाँ तो उसी की आगामी अवस्था है, उससे घी निकल जाता है आगे, बिल्कुल शुद्ध। बहिरा समता है जान तजी, अंतर आत्म हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। क्या कह दिया इन्होंने, आपके करने योग्य काम क्या है, अब समझ लो आप अपने करने योग्य क्या काम है। बहिरा समता है ये जान तजी, बहिरात्मापन को हे जान करके त्यागना, हे का मतलब समझते हैं आप, हे का मतलब है त्यागने योग्य, हे गे उपाधि, सुने आपने चर्चा, हे क्या होता है, गे क्या होता है, उपाधि क्या होता है, हे मतलब छोड़ने योग्य, गे मतलब जानने योग्य, और उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य। तो यहाँ हे क्या है, छोड़ने योग्य क्या बतलाया है, निष्कर्ष बतलाया है, बार बार बात कह रहे हैं, निचोड़ कह रहे हैं, जनाजन का सार बतला रहे हैं, क्या छोड़ने योग्य है। अच्छा मतलब क्या क्या छोड़ने योग्य, आलू छोड़ने योग्य है कि नहीं है, शराब मांस आदि छोड़ने योग्य है कि नहीं है, जुआ खेलना छोड़ने योग्य है या नहीं है, सप्त रसन का त्याग छोड़ने योग्य है या नहीं है। अरे तो सब तो परद्रव्य है, छूटे छुटाए हैं, क्या तो क्या कह रहे हैं, मैं उनको खेलता हूँ, मैं उनको खेल सकता हूँ, और उनसे मैं सुख मानता हूँ, मैं सुखी होता हूँ, ऐसी जो मान्यता है उसे कहते हैं बहिरात्मापन। और ये कह रहे हैं बहिरात्मापन को ये जान करके छोड़ना, क्या छोड़ने योग्य, देखो आप कैसे अंतर्दृष्टि से बात करते हैं। बहिरात्मता हे जान तजी, बहिरात्मापन को हे जान करके छोड़ दो, किसा फिर ये सब नहीं छोड़े, देखो कैसे इसके अंदर में तो रस बैठा है ना उन चीजों का, क्या उपाय बतलाया पड़े, आज आपने अपनी बात बता दी, ये हमारे है ना महेंद्र भाई, ये हमेशा पीछे पड़े हुए थे, तुम ये करते हो वो करते हो, ये छोड़ो क्या तुम कहा उलझे रहते हो, आज आपने अपनी बात बतला दी, इनको भी समझा दिया और हमारी भी समझ में आ गई, इन सबको नहीं छोड़ना है, इन सबके प्रति मोह महत्व को छोड़ना है, चलने दो अपने जो चल रहा है लाइफ स्टाइल अपनी जैसी चल रही है, बस तोड़ देंगे मोह। लेकिन भाई साहब इन धोखे में मत रहना, जिनका मोह टूट जाता है, जिनका राग टूट जाता है, जिनकी उनमें से सुख बुद्धि टूट जाती है, फिर उनकी उसमें प्रवृत्ति छूटे और टूटे बिना रहती नहीं है। आई बात, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, आप ऐसा सोचेंगे साहब अंदर से नहीं, अंदर से छोड़ देंगे, बाहर में तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं, अंदर से है ना छोड़ने योग्य, तो और खरा खरा करके पूछ लो, पंडित सच मतलब वो ही छोड़ना है ना, राग ही छोड़ना है ना, वो तो तोड़ देंगे, उसमें क्या है, कपड़े थोड़ी ना छोड़ने, घर थोड़ी ना छोड़ना है, विषय भोगों को थोड़ी ना छोड़ना है, टीवी थोड़ी ना छोड़ने हमारे को। अरे भैया छोड़ने योग्य तो सभी है, लेकिन यहाँ पहले उसके प्रति राग अपनापन ममत्व मोह मिथ्यात्व छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है छोड़ने के लिए, क्या चीज छोड़ने योग्य है ये निर्णय करना जरूरी है। बहिरा समता ही जान तजी, अंतर आत्म हुजे, अंतर आत्मा हो जाना, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, परमात्मा का ध्यान करना निरंतर, जो अनंत आनंद को उपलब्ध करा देगा। ये कैसे परमात्मा का ध्यान करो, कि देह देवल में विराजमान एक आत्म तत्व मौजूद है जिसे परमात्मा कहते हैं, योग सार में योगिंदु देव कहते हैं, जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते। क्या कह रहे हैं? जिन देव कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं? जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। हंसी आती है हमारे को, आश्चर्य लगता है हमारे को कि तू स्वयं परमात्मा स्वरूप होकर के कहाँ भटक रहा है। पानी में नींद प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाथी। पानी में रहते हुए मछली को प्यास लगे, प्यासी है वो, सुख का दरिया होकर के, सुख सरोवर होकर के, आनंद का रसपंद होकर के, आनंद का इंद्रिय आनंद सुख का भंडार होकर के, तो दीन दुखी और दरिद्री बना फिर रहा है। क्या कारण है उसके पीछे कि तेरा ये मिथ्यात्व ऐसा है जिसके पाप की वजह से तू चतुर्गति में दर्दर की ठोकरें खाता है। इसलिए अब क्या करें, निष्कर्ष स्वरूप बात कह दो आप। निष्कर्ष स्वरूप बात यही है कि जगत के पदार्थों का कर्ता धर्ता अपन त्यागो। मैं पर पदार्थों का कर्ता धर्ता हूँ इस मिथ्या मान्यता का त्याग करो, और देह से भिन्न अपना चैतन्य तत्व है एक बार उसके स्वरूप का विचार करो। आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है उसके स्वरूप का गहराई से विचार करो। जब जब परमात्मा को देखो तो परमात्मा से कुछ मांगो नहीं, अपने आप को प्रेरित करो कि तुम जैसा बनने के लिए परमात्मा तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ। जब जब तुम्हारे को देखता हूँ तुम जैसा बनने की भावना अंदर से और तीव्र जागृत होती है। ऐसा चिंतन करो, ऐसा विचार करो, आत्मा कौन, आत्मा का क्या स्वरूप, आत्मा के कैसे गुणधर्म। अरे आत्मा आत्मा के कहता हूँ तो फिर ऐसे लगता है पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, मेरे कौन से गुणधर्म। और ऐसा चिंतन मनन करते हुए, विचार करते हुए, जब इन प्रकृष्ट प्रकार के विचारों को करेंगे हम, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये विचार विकल्प भी टूट जाएंगे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। ये जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाएगा, और जो जीव अंतरात्मा होते हैं वे कालांतर में अल्प काल में परमात्मा अवश्य होते ही होते हैं। हम सभी इस प्रकार जीव तत्व का स्वरूप समझ कर सभी परमात्मा बन जाएं, और जीव की जो परम उत्कृष्ट अवस्था है सिद्ध अवस्था उसको अति शीघ्र प्राप्त करें, संसार समुद्र का अभाव करें, अनंत दुखों से मुक्ति प्राप्त करें, अनंत सुख की प्राप्ति करें, और सिद्धालय में अनंत काल तक जाकर के विराजमान हो जावे। इन्हीं सब भावनाओं से मैं यहाँ बात को विराम देता हूँ।